नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। वंशाकल्पितरूभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 9 श्लोक संख्या 6।
सा त्वं नह स्वधर्म मानानां एक वस्तुनि मानिनि ज्ञातीनां वधवैराणां सं विधत्स्व सुमध्यमे। सा त्वं न अस्पर्धमानानां एक वस्तुनि मानिनि एक वस्तुति मानिनि ज्ञातेनां वधवैराणां समं विधस्व सुमध्यमे। संविधत्व सुमध्यमे सा त्वं न स्पर्धमानानां एक वस्तुनि मानिनि ज्ञातेनां वधवैराणां संविधत्व सुमध्यमे। सा त्वं नः अस्पर्धमानानां एक वस्तुनि मानिनि ज्ञातीनां वधवैराणां संविधत्स्व सुमध्यमे।
और कोई वैष्णवी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ
सा जैसी तुम हो, त्वम तुम, न है हम सभी असुरों के, अस्पर्धमानानाम जो अधिकाधिक शत्रु बनते जा रहे हैं उनके, एक वस्तु ने एक वस्तु में अर्थात अमृत पात्र में, मानिनी हे प्रतिष्ठित सुंदरी, ज्ञाती नाम अपने परिवार वालों में, बद्ध वैराणाम अधिकाधिक शत्रु बनकर, सम कल्याण विधत्व संपन्न करो, सुमध्य में हे पतली कमर वाली सुंदरी। अनुवाद, इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यप हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव हे छेड़ कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। तात्पर्य आवृत्ति करें पुनः, इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव हे छेड़ कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। तात्पर्य, असुर लोग समझ गए थे कि उस सुंदरी ने उन सब का मन मोह लिया था, अतएव उन्होंने एक स्वर से उससे प्रार्थना की कि वह उनके झगड़े का निपटारा करने के लिए मध्यस्था की भूमिका निभाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रस्तुत श्लोक का शीर्षक है मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। प्रस्तुत श्लोक में यह वर्णन किया गया है अमृत के कलश का और भगवान की मनमोहनी स्वरूप के, और तीसरा पॉइंट है झगड़ा निपटाने के। अमृत क्या है अभी हम श्रवण करेंगे कि अमृत क्या है और भगवान की वो मोहिनी स्वरूप क्या है और मोहिनी ने किस तरह असुरों की झगड़ा मिटा दी, इस विषय को हम क्रमानुसार श्रवण करेंगे। इस प्रसंग को आप सभी श्रवण करते आ रहे हैं कि भगवान ने देवताओं को अमर बनाने के लिए समुद्र मंथन कराया, दूध का समुद्र मथा गया जिसमें मथानी बने मंदराचल पर्वत। प्रश्न उठता है कि मंदराचल पर्वत को ही क्यों लाया गया, दूसरी पर्वत भी आ सकते थे। इसका उत्तर यह है कि मंदराचल पर्वत जो सोने का पर्वत था उसका जो आकार था मथानी की तरह था, मथानी की तरह आकार था जिसमें वास्तु नाग को अच्छी तरह से लपेटा जाए और देवता दानव दोनों मिलकर के दूध के समुद्र को मंथन करें। तो मखानी के आकार का वह मंदराचल पर्वत था, इसलिए मंदराचल पर्वत को लाया गया और माथा गया, तो उसमें 14 रत्न निकले। रत्न का अर्थ वस्तु से है, केवल सोना चांदी से नहीं है, रत्न वस्तु। विभिन्न प्रकार के रत्न दूध के समुद्र से निकले, 14 रत्न निकले। 14 में अमृत निकला, 20 कामधेनु ऊंचे सर्वा, पहला विष निकला जो शिव जी को दिया गया, दूसरा कामधेनु जिसे सुरभि गाय कहते हैं। सुरभि गाय की विशेषता यह है, या कामधेनु की विशेषता यह है कि आपकी जितनी भी मनोकामना है सारी मनोकामना को कामधेनु पूर्ति कर देगी, जो आपको चाहिए वो वस्तु प्रदान करेगी। जैसे आप लोग देखे होंगे यमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी, उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन का स्वागत किए थे, वो कामधेनु भोजन भी देते थे, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान को भी प्रदान करते थे। कामधेनु जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे, और सुरभि गाय ऐसी गाय है कि आपको जितना दूध चाहिए उतना दूध वो दे सकती है। तो सुरभि गाय तो भगवान के धाम में है, तो कामधेनु भी उत्पन्न हुए, मैंने सुरभि गाय भी उत्पन्न हुए। 20 कामधेनु ऋषि मुनि ले लिए। ऊंचेश्वरा नाम का एक घोड़ा निकला, ये उज्जवल वर्ण का था, बलि महाराज लिए। एरावत नाम का हाथी निकला, वो इंद्र लिए। और भी उसमें हाथी और हथनी का प्रकट हुआ, वर्णन है इसमें। वे देवता लिए। कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान लिए, क्योंकि समुद्र मंथन में भगवान भी लगे थे। एरावत, कौस्तुभ, पारिजात एक पुष्प है, पेड़ है, वो निकला, देवता लिए। 20 काम देने ऊंचे सर्वा, एरावत, कौस्तुभ, पारिजात, अप्सरा निकली, तो अप्सरा को देवता लिए। शंख भगवान लिए। चंद्र शिव जी को दिया गया, चंद्रमा को। शंख चंद्र लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी ने स्वयंवर किया। ऋषि मुनियों की, देवताओं की, तो उसमें उन्होंने भगवान को वरण किया। वारुणी नाम की मदिरा, मतलब एक स्त्री प्रकट हुई जो असुरों को मिली, असुर लोग लिए, दैत्य लोग। और धन्वंतरी अमृत, फिर धन्वंतरी भगवान आए 13वें में और अमृत का कलश लिए थे। ये 14 रत्न। तो जब धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के, सोने का कलश था, प्रकट हुए, तो भगवान के हाथों से दैत्य लोग अमृत का कलश छीन लिए। तो भगवान ने विचार किया, यदि मेरे हाथों से तुम लोग अमृत का कलश छीन लिए तो मैं अब एक ऐसा सुंदर स्वरूप बनाऊंगा, अब तुम लोगों को हाथों से अपने आप में अमृत का कलश ले लूंगा, हमको छीनना नहीं पड़ेगा। तुम लोग तो हमसे झपट कर ले लिए, लेकिन मैं बिना झपटे तुम लोगों से अमृत का कलश ले लूंगी। इसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर स्वरूप वाली मोहनी स्वरूप वाली स्त्री का रूप धारण कर लिए। पहले अब यहां प्रश्न उठता है, जो अमृत का कलश लेकर के स्त्री प्रकट हुई, माने भगवान प्रकट हुए, तो अमृत क्या था, प्रश्न उठेगा, अमृत है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करें। अमृत के बारे में विद्वानों का मत है, पहले अमृत शब्द का अर्थ देखिए, अमृत जो मरण प्रक्रिया को मिटा दे उसका नाम है अमृत, जिसको पीने से लोग अमर हो जाएं। तो अमृत दो प्रकार के हैं। तो इस संसार में प्राय लोग दूध को अमृत बोलते हैं। दूध का समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो रसायन तत्व निकला उसको लोग अमृत बोलते हैं। जैसे आप रोज पंचामृत का सेवन करते हैं, बोलते हैं ना रोज भगवान का शालिग्राम जी का चरण अमृत लेते हैं, अमृत बोला गया। इस लोक में दूध को अमृत बोलते हैं। तो जिस जो अमृत दूध के समुद्र से प्रकट हुआ, उस अमृत को पान करने से देवता लोग दीर्घजीवी बनते हैं, मतलब बहुत काल तक जीवन व्यतीत करते हैं, यथाशीघ्र मृत्यु नहीं होगी। और दूसरा अमृत कौन है? दूसरा अमृत है ये कथामृत, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, ये अमृत है। देवता लोग जिस अमृत को पान करते हैं, उस अमृत को पान करने से वे दीर्घजीवी बनते हैं, लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। लेकिन वह अमृत उन्हें निर्भय नहीं बना सकता, अमृत पीने के बाद भी देवताओं के ऊपर खतरा है, असुर आक्रमण कर देते हैं। उस अमृत को पीने से निर्भय नहीं बनते। तो कुछ लोग कहते हैं अमृत कहाँ है, कुछ लोग कहते हैं कि अमृत सागर में है, कुछ लोग कहते हैं कि अमृत चंद्रमा में है, कुछ लोग कहते हैं कि अमृत स्त्रियों की अधर पर है, होठ पर है, कुछ लोग कहते हैं कि अमृत शेषनाग के पास है। अब इसका वर्णन सुनिए। तो इसके उत्तर के लिए वो लोग जो चर्चा किए थे कुछ लोग, तो एक संत के पास गए, एक वैष्णव के पास गए। तो वैष्णव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। देखो, यदि सागर में अमृत रहता तो फिर सागर का जल खारा क्यों होता है? सिंधु में भी अमृत नहीं है, इसका मतलब अमृत नहीं है, उसका जल मीठा होता। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो फिर चंद्रमा में जो कलापन है, जो दाग है, वो क्यों नहीं मिट जाता? चंद्रमा में कलापन तो बना रहता है, उसकी झाई नहीं जाती, वो कलंकित है, उसका कलंक क्यों नहीं मिट जाता? मतलब उसमें भी चंद्रमा नहीं है, उसमें भी अमृत नहीं है। यदि स्त्रियों की होठ में अमृत है, अधर में अमृत है, तो फिर उसका पति उस अमृत अधरामृत को पान करता है, फिर क्यों उसकी मृत्यु होती है? अमृत को पीने से लोग तो अमर हो जाते हैं। फिर बोले कि शेषनाग के पास है, क्योंकि गरुण जी सर्पों को अमृत दिए थे ले जाकर के। तो यदि शेषनाग के पास अमृत रहता तो फिर उसके पास विष क्यों है? अमृत यदि उसके पास रहता तो विष नहीं रहता। तब उस संत ने कहा कि ये जितने प्रकार की जो अमृत की चर्चा हो रही है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब बातों की बात है। अमृत है कहां? देखिए, बहुत सुंदर ढंग से इसको वैष्णव और वैष्णवी दर्शाते हैं। गोपियों ने दर्शाया कि अमृत कहां है, बहुत सुंदर। आप सभी जानते हैं, तौ कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा ही अमृत स्वरूप है, जिसको श्रवण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और निर्भय पद को, अभय पद को प्राप्त करता है। आपकी कथा वीरा से सताए हुए लोगों के लिए जीवन सर्वस्व है। जैसे कोई धूप से व्यक्ति पीड़ित हो, यदि वृक्ष की छाया में चला जाए तो उसको शीतलता मिलती है, उसको बहुत सुख मिलता है। उसी प्रकार से संसार में लोग दैहिक दैविक तापों से झुलस रहे हैं, जब वो भगवान की कथा सुनते हैं तो उनका हृदय शीतल हो जाता है। कथा शीतलता प्रदान करती है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा और भक्त कवियों ने उसका गान किया है। और क्या करती है कथा, सारे पाप ताप को मिटा देती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगलमय परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो उस लीला को गान करते हैं वास्तव में इस भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं, दानी हैं। जैसे श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने, परमहंस चूड़ामणि श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथामृत का श्री परीक्षित महाराज को पान कराया। कथा सुन करके वे शरीर में से पहले निकल गए, तक्षक नाग दसने से पहले निकल गए, विमान पर चढ़कर भगवत धाम चले गए। तो वास्तविक जो अमृत है वो अमृत वैष्णवों के पास है, उनकी वाणी में है। भगवान स्वयं अमृतमय है, भगवान का शरीर ही अमृतमय है। जैसे काली नाग ने भगवान को डसा, उनके शरीर पर डंका प्रहार किया, लेकिन फिर भी वो जो विष थे वो भगवान का स्पर्श से अमृत में बदल जाते थे, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वह अमृतमय है, उनके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान सर्वसिद्ध है। तो भगवान की जो कथा है, भागवत की जो कथा है और भगवान का जो नाम है, ये दो इस संसार में कतई से अमृत है। इसी को जो पान करता है वह दिव्य जीवी बनता है, भगवत धाम को प्राता है, प्राप्त करता है और वहां जाकर के सदा के लिए सुखी हो जाता है। और देवता लोग जिस अमृत को पान करते हैं, इसे देवता लोग अमृत तो पान किए, मोहिनी अमृत तो पिलाई, लेकिन इसके बाद असुर तुरंत उनके ऊपर आक्रमण कर दिए, तो उसमें तो जीत गए। देवता लोग अमृत पान किए थे जीत गए, लेकिन जो असुर मारे गए, बलि महाराज निवात कवच इत्यादि बहुत बड़े बड़े असुर थे, उनको शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिए, शक्तिशाली बना दिए, फिर स्वर्ग पर धावा बोल दिए, फिर स्वर्ग को छोड़कर देवताओं को भागना पड़ा। तो उस अमृत को पीने से भी कुछ नहीं होने वाला है, भय बना रहता है। जब उनके पास अमृत था ही, तो परीक्षित महाराज के पास देवता अमृत का कलश लेकर क्यों आए कि हमें अमृत पान करा दीजिए और इस अमृत को परीक्षित महाराज को पान करा दीजिए, इनका विष दंत उतर जाएगा। वो तुक्ष अमृत है, देवता जिस अमृत का पान करते हैं वो तुक्ष अमृत है, उसको पीने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है और उनकी अवधि बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पुणे मर्त्यलोकम विसन्ति, फिर ऊपर से नीचे आना पड़ता है उनको। यदि भगवान का स्मरण किए तो उनका वहां से प्रमोशन हो जाएगा, अगर स्मरण नहीं किए भोग में लिप्त रहेंगे फिर वहां से नीचे आना पड़ता है। देवता लोग मानव शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यदि मेरी जीवन की अवधि कुछ शेष बचे तो मुझे भारत वर्ष में जन्म लेने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि भारत वर्ष के लोग भागवत की कथा सुनकर स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं, जहां से जीव को लौटना नहीं पड़ता है। यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वहां भागवत कथा अमृत का लोग पान करते हैं, उस अमृत को पान करते हैं, हम तो तुक्ष अमृत को पान करते हैं। तो वास्तविक अमृत भगवान स्वयं अमृतमय है और उनकी कथा ही अमृत है और उनका नाम अमृत है। चेतन महाप्रभु ने कहा कि मैं कहां तक इस अमृत को पान करूं, इस अमृत को पिलाओ। वैदिक शास्त्रों का निचोड़ा हुआ जो सार तत्व है वो क्या है, भगवत प्रेम, वो है भगवान नाम। भगवान का जो नाम ही अमृत है, इस अमृत को पान कराओ। इस अमृत को जो भी पिएगा वह अमर हो जाएगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा और वास्तविक स्वरूप पार्षद बनकर के भगवत धाम चला जाएगा और सदा के लिए सुखी हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अमृत को पान कराने के लिए महाप्रभु के आदेशों का पालन किया, विदेशों में गए और वहां जाकर के हरिनामामृत का कथामृत का पान कराए। आज बहुत से विदेशी, देखिए फॉरेनर, कथा को सुनकर आकर्षित हो गए और आज देखिए अमृत का पान कर रहे हैं। उनके हाथ में भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता है, झोली माला है, भद्र बनकर माथे पर तिलक, गले में कंठी है और अमृत का पान कर रहे हैं। भगवान नाम को गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो अमृत जिसको कहते हैं वो वास्तविक अमृत है, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा और भगवान का नाम, इसी नाम को सभी लोगों ने पिया है। सुखसन का भी सिद्ध मुनि जोगी पीकर इसको हुए अजर, मुनि मृकंड सुत इसको पीकर हुए सदा के लिए अमर, सबरी गणी का गीध यजामिल पीकर इसको गए सुधर, ध्रुव प्रहलाद इसी को पीकर गए अगम भवसागर तर, बने विज्ञ हनुमान विभीषण वाल्मीकि इसको पीकर मीराबाई विष प्याले को घूट गई इसके बल पर। ये ऐसा अमृत है कि विष को भी अमृत बना देता है, विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अमृत है भगवान का नाम, इसलिए इस अमृत का पान करना चाहिए। देवता लोग इस अमृत का पान करते हैं, वो तुच्छ अमृत है और उससे उनकी जीवन की लंबी आयु होती है, लेकिन इसके बाद भी खतरा उनको बनी रहती है, फिर स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, फिर 84 के चक्र में वो पड़ जाते हैं। जब ही 84 के चक्र से आप मुक्त होना चाहते हैं तो उसमें सदैव भगवान नामामृत का पान कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवता लोग जिस अमृत का पान करते हो दीर्घजीवी बनते हैं, और वैष्णवगण जिस अमृत का पान करते हो दिव्यजीवी बनते हैं, माने अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और भगवत धाम जाकर सदा के लिए सुखी हो जाते हैं, तो उसको हम अमृत बोलते हैं। तो यहाँ पर अमृत का वर्णन है। तो अब प्रश्न उठता है, इस अमृत के बारे में हुआ, अमृत का कलश लेकर भगवान प्रकट हुए, अच्छा देवता लोग दैत्य लोग छीन लिए, छीनने का मतलब यह है क्योंकि भगवान ने पहले देवताओं को समझा दिया था कि समुद्र मंथन से क्षीर सागर से बहुत सी वस्तुओं का प्राकट्य होगा, तुम लोग झगड़ा मत करना, सावधान रहना, चुपचाप रहना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे झगड़ा नहीं करते हैं, और जो आश्रय स्वभाव के होते हैं वे झगड़ा करते हैं किसी भी चीज को बांटने में। कोई व्यक्ति बांट रहा है, कहीं भी वितरण हो रहा है प्रसाद, तो असुरों की तरह झपटने का नहीं, इसे शिक्षा मिलती है। देवता लोग शांत हैं तो देवताओं की तरह रहने का, शांतित रहने का, उसे शांति बनी रहती है, ये सब सीखना चाहिए। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं शांत रहते हैं। तो देवता लोग आश्री वृत्ति माने छीनना झपटना ये आश्री वृत्ति है, उसे अशांति होती है। वैष्णव लोग शांत कराते हैं, जैसे लाइफ मेंबर का प्रसाद यहां बढ़ता है, देखिए आजीवन सदस्य आते हैं, भीड़ लग जाती है, लेकिन वैष्णव लोग शांति कराते हैं, लाइन से आइए, और लाइन से आने से वास्तव में शांति होती है। तो वैष्णव लोग जहां भी रहेंगे वहां शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि वो मर्यादा में रहते हैं, और असुर लोग जहां भी रहते हैं वहां अशांति होती है। तो अमृत का कलश देखते ही असुर लोग भगवान के हाथ से, धन्वंतरी भगवान के हाथ से झपट लिए, छीन करके भागे, हम पीले देवताओं को न मिले, हम अमर हो जाएं, और आपस में झगड़ा करने लगे असुर लोग, मैं पीऊंगा ऐसा करके झगड़ा करने लगे। तब भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान ने एक चाल चली, इसके लिए भगवान ने असुरों को ठगने के लिए, दैत्यों को ठगने के लिए भगवान ने सुंदर स्त्री का स्वरूप बना लिया, आकर्षक स्वरूप, जिसको मोहिनी स्वरूप कहा जाता है, जिसको देखने से ही लोग मोहित हो जाएंगे। याद रखिए भगवान का ये जो स्वरूप है, मोहिनी स्वरूप जो भगवान धारण किए हैं, सुंदर स्त्री बने हैं, तो उनके सामने जब मोहिनी आई तो मोहिनी को देखते ही, याद रखिए सुंदर स्वरूप को देखते ही असुर आपस में झगड़ा करना बंद कर दिए और मोहिनी के प्रति आकर्षित हो गए, देखते ही रह गए, और जबरदस्ती उस कलश को लेकर के मुनि के हाथ में दे दिए। विद्वान कहते हैं, ध्यान से सुना जाए, कि इस संसार में मदिरा को पीने से नशा होती है, मदिरा को पीने से नशा होती है, लेकिन स्त्री एक ऐसी मदिरा है कि जिसको देखने से ही नशा हो जाती है। पीने की तो बात अलग रही, देखने से नशा हो जाती है, देखने से लोग पागल हो जाते हैं। क्यों, क्या बात है इसमें, विशेषता क्या है? विशेषता है उस रूप में नारी इस प्रकृति का, प्रकृति की श्रृंगार है, विधाता ने उसे रचा है। नारी को कहा गया है कि वो बसंत ऋतु के समान है, और दूसरे शब्दों में यह भी कहा गया है कि वो ग्रीष्म ऋतु के भी समान है। बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु से तुलना किया गया है नारी के। बसंत ऋतु में आप देखिए, बसंत ऋतु में सारे फूल खिल जाते हैं, आम बुझराने लगते हैं, पुष्प खिल जाते हैं। उस ऋतु में बहुत आनंद आता है। तो कहने का भाव यह है, बसंत ऋतु की आते ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो सुंदर स्त्री किसी भी सभा में जाएगी, कहीं भी जाएगी, कोई भी देखेगा तो झट से मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, भूल जाता है। जैसे असुर लोग भूल गए, देवता लोग तो चुपचाप हैं, भगवान ने पहले उनको सावधान कराया था, लेकिन असुर लोग मोहित हो गए, देखते ही भूल गए। अमृत में जो झगड़ा कर रहे थे उसको भूल गए अमृत के लिए, और मोहिनी के रूप के प्रति आकर्षित हो गए, तो उनका तो झगड़ा खत्म हो गया कि नहीं? स्त्री को माने मोहिनी स्वरूप को देखते ही उनका झगड़ा खत्म हो गया, जो आपस में झपट रहे थे, छिनाछिनी कर रहे थे, वो बंद हो गया। देखिए स्त्री स्वरूप में कितनी जादू है, उसमें ज्यादा आकर्षण है, उसके स्वरूप का ऐसा हठन गठन है, विधाता ने बनाया है कि कोई भी व्यक्ति देखेगा तो मोहित हो जाता है। असुरी विचार के लोग जल्दी मोहित होते हैं, जो दैवी विचार के होते हैं वो धीर होते हैं, तो वे समझते हैं कि भगवान की मोहिनी स्वरूप है। इसलिए लोग आज ऑफिसों बड़े बड़े देखिए, अपने ऑफिस में दफ्तर में सुंदर सुंदर स्त्रियों को रखते हैं, और सिखाते भी हैं कि हंस करके बातें करना, हमारा व्यापार इससे बढ़ेगा, और रहते भी हैं सब। अप्सरा का सब जगह डिमांड है। कहने का भाव है कि स्त्री बसंत ऋतु के समान है, वो जहां भी जाती है पुरुष को उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। असुर ने क्या कहा? असुर ने कहा कि सारा अमृत तो तुम्हारे अंदर है, 14 रत्न को तो छोड़ दो। जो 14 रत्न, बोले कि 14 रत्न ही इसको भूल गए, और उस मोहिनी को पाने के लिए असुर ललायत हो उठेगा कि 14 रत्न तो तुम्हारे ही भीतर है, सबसे बड़ा अमृत तो तुम हो। उनको पाने के लिए देवता असुर लोग बिल्कुल ललायत हो उठे। भगवान ने स्वयं वर्णन किया स्त्री के बारे में, याद रखिए, जब नारद जी विवाह करना चाहते थे ना, उसमें भी भगवान ने एक माया रचा, विश्वमोहिनी का स्वरूप धारण किया, नारद जी मोहित होकर बंदर का रूप दिया था, साप दिया नारद जी ने, भगवान उसको स्वीकार कर लिए। फिर नारद जी के प्रति भगवान ने माया का पर्दा खींचा तो नारद को ज्ञान हुआ था। नारद जी ने पूछा कि जब मैं विवाह करना चाहता था तो आप मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान ने उत्तर दिया है कि तुम ब्रह्मचारी हो ना, ब्रह्मचारी को उधर जाने की क्या जरूरत है, ब्रह्मचारी को तुम तो बैरागी हो, बैरागी की स्त्री से क्या लेना देना है, तुमको अहंकार हो गया था। वास्तव में उन्हें अहंकार था नारद जी को कि हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर ले, शिव जी समझाए थे फिर भी उनकी बात को नहीं माने थे, इसके लिए भगवान ने थोड़ा समय के लिए उन्हें बंदर का रूप दिया था। तो भगवान वो भी स्वरूप देकर के मोहित हो गए, तो भगवान से पूछे कि क्यों माना के, तो भगवान ने समझाया कि जो स्त्री होती है बसंत ऋतु की सदृश होती है, याद रखो, और इसके बाद वो ग्रीष्म ऋतु बन जाती है, तुम उसके मोह पास, तुम उसके सौंदर्य में डूब जाओगे, तुमको अपने बस में कर लेगी, जो तुम में चमक दमक है ना, ये सारी चमक दमक को छीन लेगी। ग्रीष्म ऋतु जैसे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में तालाब के जल सूख जाते हैं, वैसे तुम्हारा जीवन सूख जाएगा। जो चमक दिख रहा है ये तेज नहीं रहेगा शरीर, ऐसी होती है काम। तू बैरागी हो तो गृहस्थ हो नहीं, इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ने का। कहने का भाव यह है कि प्रकृति के आंगन में स्त्री वसंत ऋतु के सदृश होती है, उत्साह वर्धक होती है, जहां भी जाती है पुरुष को उत्साह हो जाता है। पहले भगवान ने पुरुषों का निर्माण किया, लेकिन देखिए कि ये सब विचरण कर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तब उनको बंधन में डालने के लिए फिर स्त्री का निर्माण किया। स्त्री पुरुष को बंधन में रखती है, बंध करके रखती है। मजाल की जिसकी शादी हो ये घर छोड़ करके भाग जाए, कहीं भी जाएंगे वो नहीं छोड़ेगी, पुलिस को केस करेगी तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। सामाजिक बंधन है आपके ऊपर। जैसे बकरी में आप लहास बांधते हैं, बकरी होती है ना, बकरा बकरी जो घास चरने के लिए जाते हैं, लंबी रस्सी होती है, कहां जाएगी, दूर भी जाएगी तो रस्सी कहेगी इधर आओ उधर मत जाओ। तो स्त्री एक बंधन होती है समाज की, अब जो उसमें बंध गया निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो पूरी क्षमता का अधिकार हो गया उनके ऊपर, बहुत बड़ा बंधन है। कहने का भाव यहाँ यह है कि स्त्री जो स्वरूप है वो आकर्षक स्वरूप है, और सुंदर स्त्री को देखकर कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाता है, उसमें ज्यादा चुंबकत्व है। मेरा कहने का भाव है तो स्त्री जब भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करके और जब प्रकट हुए तो उस स्वरूप को देख करके असुर लोग मोहित हो गए और उनसे प्रार्थना किए कि आप हमारे झगड़ा को निपटा दीजिए। और हम सभी देवता तथा असुर एक ही पिता एक ही कश्यप की संतान हैं, और इस तरह से हम भाई भाई हैं, और हम लोगों में मतभेद का जो कारण है, मतभेद के चलते हम अपना पराक्रम दिखला रहे हैं, अतः आपसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें और इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दें। देखिए, स्त्री स्वरूप धारण करने का मतलब यह है, क्यों भगवान ने स्त्री स्वरूप धारण किया? भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ भी बन सकते हैं। देखिए भगवान की विशेषता, देवता भगवान के भक्त हैं, उनके शरण में गए हैं, तो भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए स्त्री बने, मोहिनी स्वरूप धारण किए और उनकी इच्छा को पूर्ण किए। असुर अपने आप कलश दे दिए और वो मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाकर वहीं देवता और दानवों के बीच में ही मोहन बनकर अदृश्य हो गई, वो अपना काम बना ली। देवताओं को अमृत पिलाई वो, असुरों को नहीं। लेकिन असुरों को क्यों नहीं अमृत दिया उन्होंने? इसलिए कि असुर जो होते हैं वो दुष्ट विचार के होते हैं, वो समाज में अशांति फैलाए होते हैं। असुरों को अमृत पिलाना मतलब सर्प को दूध पिलाने के समान है, उसका विष बढ़ेगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी तो समाज में उत्पात मचाएंगे, इसके लिए उन्होंने असुरों को अमृत नहीं पिलाया। और दूसरी बात कि असुर भगवान के शरण में नहीं थे, देवता लोग भगवान के शरण में थे, देवता लोग भगवान के शरण में गए थे, असुर तो भगवान के हाथ से छीन लिए। इसलिए अपने भक्तों की मनोकामना को वंशा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी बन सकते हैं। जैसे देखिए भगवान विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं, यहां तो मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए, और इसी मोहिनी स्वरूप को शिव जी भी देखना चाहते थे कि आप अपने मोहिनी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। देवता लोग असुर लोग न मोहित हो गए, हम तो देवता हैं, हम तो महादेव हैं, आपकी सभी लीलाओं का हमने दर्शन किया है, मुझे भी दर्शन कराइए। और भगवान जब शिव जी बोल रहे थे तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, देखिए कि इनके अंदर भी कुछ अहंकार दिख रहा है मतलब। और सती साथ में थी शिव जी के, वैकुंठ गए थे देखने के लिए, और जब ही मोहिनी स्वरूप बन करके भगवान उनके सामने प्रकट हुए तभी शिव जी सती को भूल गए और भगवान के पीछे दौड़ पड़े, भगवान के पीछे दौड़ पड़े। क्या आकर्षक है भगवान के इस स्वरूप में, शिव जैसे महादेव जी भी वो आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, और मोहिनी भागी सती बहुत सुंदरी थी लेकिन उसको भूल गए। अब पकड़े तब पकड़े, एक बार पकड़ लिए शिव जी भगवान मोहिनी स्वरूप को, मोहिनी फिर छुड़ा करके भागी, उनका ब्रिज स्खलित हुआ, वही ब्रिज धरती में सोना चांदी के रूप में हो गए। शिव जी तपस्वी हैं, किसी दूसरे स्त्री के पीछे नहीं दौड़ते हैं, याद रखिएगा इस बात को। विद्वान लोग कहते हैं कि शिव जी जानते हैं कि भगवान है, वो काम के पीछे नहीं दौड़े थे, वो भगवान के पीछे दौड़े थे। और शिव जी भगवान की मोहिनी स्वरूप की महिमा को बढ़ाना चाहते थे। हे प्रभु, आपकी जो मोहिनी स्वरूप है ये किसी को भी मोह सकती है, हम जैसे देवताओं को भी मोह सकती है। मुह्यंती यत सूर्य जन्मा दस्य तुन्मयादि चरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने हृदय आदि कवे। मुह्यंती यत सूर्य माने देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, शिव जी भी मोहित हो जाते हैं, मोहित हो गया। भगवान की ऐसी माया है, जो स्त्री है वह भगवान की माया है। और शिव जी मोहित हो गए, फिर आशीर्वाद दिया, मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। तो जो स्त्री स्वरूप है वो मोहिनी स्वरूप है, तो इसमें शिक्षा लिया गया है कि इसे शिक्षा, हाँ जैसे भगवान कच्छप भी बन गए, देख कच्छप बन करके समुद्र मंथन कराए देवताओं के, हम देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। भगवान वामन स्वरूप भी बन गए, अपने भक्तों को फिर स्वर्ग का राज दिलवाए। हंस बन गए, ज्ञान प्रदान किए, आत्म तत्व के ज्ञान का उपदेश दिए चारों कुमारों को। भगवान कुछ भी बन जाते, बराह बन गए भगवान, बराह शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किए और मनुष्य रूपा को सृष्टि करने का आधार दिए। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देवता लोग जैसे भगवान के शरण में गए तो भगवान उनकी रक्षा किए। आप प्रतिदिन भगवान का चरण पकड़ते हैं, लेकिन भगवान समय आने पर भगवान भी कोई भक्त का चरण पकड़ते हैं, जैसे गजेंद्र लीला में आप देखिए, गजेंद्र का पांव पकड़कर भगवान जल से स्थल पर किए और चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाले। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। वर्तमान काल में भी देखिए, सखूबाई की भी कथा आती है। सखूबाई जो भगवान की भक्ता थी, सास ससुर की सेवा करती थी, उसे पसंद नहीं करते थे, सत्संग से उसको बहुत प्रेम था, वो सत्संग मंडली में चली गई और भगवान सखूबाई का रूप धारण करके सास ससुर की सेवा करने लगी। गजब है भगवान की लीला। नरसिंह का भाग ये भी दिखलाते हैं ना, कथा दिखलाते हैं वर्तमान काल में, मंदात क्या बोलते हैं, कलयुग में नरसिंह बने हैं, वो भक्त है ना जो जलकर भस्म, मुचकुंद महाराज कलयुग में नरसिंह मेहता बने, उनके भक्त थे नरसिंह मेहता। उनकी गाड़ी खराब हो गई तो भगवान बढ़ई बन करके उनकी गाड़ी को ठीक किए, देखिए। और सवरिया सेठ बन करके भात भरे, उनकी लड़की की शादी में तमाम वस्तुओं को दान की। भगवान कुछ भी कर सकते, अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी बन सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, शुकर बन सकते हैं, कच्छप बन सकते हैं, हंस बन सकते हैं, क्योंकि देवता उनके शरण में है। इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए, अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और अपना काम करके चले गए, मोहन बनकर के फिर वहां से अदृश्य हो गए। इसलिए भगवान का शरणागत होना चाहिए, जैसे भी हो हम लोगों को भगवान का होकर के जीना चाहिए, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। अब यहां देखिए, मोहिनी रूप जब भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो मोहिनी रूप को देखकर असुर ने कहा, पहले तो वो प्रार्थना की कि हम लोग की झगड़ा को निपटारा कर दीजिए, तो मोहिनी हंसने लगी कि वो तो छलने के लिए ही आई है छलने के लिए आई, हंसने लगी। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए सुंदरी ने इस प्रकार से कहा, देखिए मोहिनी क्या बोलती है। भगवान स्वयं मोहिनी स्वरूप बने, मोहिनी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, पूछे तुम किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो, तो भगवान देखिए क्या बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं एक वेश्या हूं, भगवान की भाषा देखिए, मैं एक वेश्या हूं, तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो। विद्वान पुरुष कभी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। चाणक्य पंडित ने कहा है, चाणक्य नीति का सभी जानते हैं, विश्वासों नहीं वे कर्तव्य स्त्री सुराज कुले सुच, स्त्री या राजनीतिज्ञ पर व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री का रूप धारण किए भगवान ने असुरों को सचेत किया कि उस पर विश्वास अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वह धोखा देने के लिए प्रकट हुई है। वेश्या कहे, क्यों वेश्या कहे? वेश्या बेशर्मी होती है, उसके हजारों पुरुष होते हैं। वास्तव में भगवान वेश्या जो होती है स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता है। तो भगवान भी तो स्वतंत्र हैं, भगवान अपनी भाषा से बोल रहे हैं, भगवान भी स्वतंत्र हैं। जन्माद्यस्य अतोन्वय आदि तरत चार्थेश्व भिज्ञ स्वराट, स्वराट माने स्वतंत्र, परम स्वतंत्र ने स्थिति पर कोई, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, स्वतंत्र है, जो चाहे सो कर सकते। भगवान ने शिक्षा दिया, एक मर्यादा भी स्थापित किया। स्त्री का रूप धारण करके उन्होंने छला, देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को नहीं पिलाया। इस स्वरूप से भगवान ने समाज को शिक्षा दिया कि स्त्री जिस तरह से पुरुष को ठग सकती है, अगर ठगना हो ठग सकती है, वैसे पुरुष किसी को नहीं ठग सकते। स्त्री किसी को भी चूना लगा सकती है, किसी को भी ठग सकती है, जो चाहे सो करा सकती है। महाभारत युद्ध स्त्री के चलते हुआ, द्रौपदी ने केवल हंस दिया, उसके चलते महाभारत युद्ध हुआ। और बहुत बुद्धिमान होती है, और कहीं अगर चंगुल में फंस भी जाए तो बुद्धि से वो निकल सकती है। जैसे जब अज्ञातवास बिता रहे थे पांडव लोग राजा विराट के यहां, तो विराट राजा का एक साला था जिसका नाम था किचक, और द्रौपदी तो शैलेंद्री थी, राजा की पत्नी का केस बांधने का काम करती थी। तो उसने देखा, जब वो केस बांधकर इसे लौट रही थी तो वो आ रहा था, और रास्ते में देखा, देख करके आकर्षित हो गया, और आकर्षित हो गया तो अब उसको चाहा और अपनी बहन से कहा कि तुम मुझे मेरे रूम में इसको विदा करो, मुझे ये मदिरा चाहिए। द्रौपदी समझ गई कि बात क्या है, कहा उसके बहन से, और उसकी मैंने किचक की बहन से कहा कि आप मुझे वहां मत विदा करिए, किसी दूसरी दासी को विदा कर दीजिए। लेकिन नहीं, उसने कहा कि तुम्हें को जाना होगा। द्रौपदी ने कहा कि अगर कुछ होगा तो इसका तो गई, फिर मुझको मत दीजिएगा। वो गई, वो पकड़ने की कोशिश किया, वो भागी, राजा सामने बैठा, उसके पिता, उसके पति भी सामने, युधिष्ठिर महाराज भी वहीं पर हैं, सब हैं। वो किचक जानता था, बलिष्ठ था, कि ये मेरा ससुर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा जीजा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। राजा उसके अधीन थे, अपने साले के अधीन थे, जबरदस्ती उसने विदा किया। क्या मुझसे भी इसको जादू मानती हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, रामतु वो भाई का पक्ष ली, लेकिन उसने कहा तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। वो गई, पकड़ने की कोशिश किया, और भरी सभा में आया, उसके बाल को पकड़ लिया, घसीट भी दिया युधिष्ठिर महाराज सामने। युधिष्ठिर महाराज ने विवेक से काम नहीं लिया, राजा तो चुपचाप, विराट राजा तो चुपचाप बंद, उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने विवेक से काम लिया और कहा तुम शैलेंद्री हो, जाओ तुम अपने दासी का काम करो। तो उनको राहत मिला और वहां से निकल गई। इसके बाद फिर अपने पति के पास हो जाती है, भीम के पास जाती है, और उसे कहती है कब तक मैं अपमान सहन करती रहूंगी, मैं आपसे विनती करती हूं किच्चक को कल सूर्योदय का दर्शन नहीं होना चाहिए, आज रात में उसका काम तमाम कर दीजिए। तब उसने उपाय बताया, देखिए भीम ने उपाय बताया, कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे रूप पर वो लट्टू है, तुम ये कह दो कि ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए नृत्यशाला में आऊंगी। जब वो आता है, कीचक आता है उसके सामने, तो गाना गाती है बगीचे में से, आकर्षित हो जाता है। जब वो आता है तो फिर मुस्कुरा करके बोलती है, इसकी स्त्री की मुस्कुराहट में जादू है, याद रखिए। मुस्कुरा करके बोली, उसने कहा कि देखो अभी हम आप तुम्हारे संग करूंगी तो कोई देख लेगा, इसलिए मैं तुझे समय देते हूं, तुम रात्रि में नृत्यशाला में मुझे मिलने के लिए आओ, तुम मेरी बात को मान जाओ, अगर मेरी बात को मान जाओगे मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तो इस पर वो बहुत खुश हो गया, ये मेरी हो जाएगी, इसी बात में वो बांध लिया और वो चली गई। और उसने किया क्या, अपने जगह पर किसको विदा किया, भीम को। और मिलने के लिए आया तो भीम ने उस कीचक का कचूमर निकाल दिया, उसका हाथ पांव सब तोड़ दिया, मंस का लोथड़ा बना दिया। द्रौपदी जैसे की तस रह गई क्योंकि उसकी बातों में ही आ गया। तो स्त्री चाहे जो चाहे सो करा दे, स्त्री का रूप बहुत खतरनाक होता है। मेरा कहने का भाव है कहीं फंस भी जाए तो भी बेचो निकल सकती है। आकर्षक स्वरूप होता है, खतरनाक स्वरूप होता है। ब्रह्मचारी को, हम सब ब्रह्मचारियों को सावधान रहना चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है, माया तो यहाँ आती है, बात करने में भी सतर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसुरी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो फिर आपको मंदिर में नहीं रहना पड़ेगा, मंदिर से आप निष्कासित हो जाएंगे। इसके लिए सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ये सब देखते रहते हैं। इसलिए मर्यादा में रहना चाहिए। तो देवता लोग तो मर्यादा में रहे, असुर लोग मर्यादा भी नहीं रहे। तो वो कहते हैं कि स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए और न राजा पर, वो कभी कुछ भी कर सकते हैं। तो धोखा देने के लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप बनाया था और उनको जो काम करना था वो काम कर दी। वेश्या इसलिए कहे भगवान कि मैं वेश्या हूं कि जो वेश्या होती है वो स्वतंत्र होती है, इधर उधर भ्रमण करती है, न उसका कोई पति है साथ में, न कोई उसका मित्र है। वेश्या तो वेश्या है। जैसे आप रामायण में कथा सुने होंगे, जब शिव, सती और शिव जी कथा श्रवण करके आ रहे थे तो सीता ने सती सीता जी राम जी की परीक्षा लेना चाहिए, और परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, सीता जी का रूप बनाया था ना। और राम जी आ रहे हैं, राम लक्ष्मण वन में आ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और बैठ गई रास्ते में। सीता जी कभी बैठ नहीं सकती हैं, अगर उनकी पत्नी रहती तो खड़े होकर के स्वागत करती पति, लेकिन वो बैठी थी, परीक्षा में तो ऐसे ही फेल हो गई। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, आकर पूछे, भवानी तुम अकेली क्यों विचरण कर रही हो, मतलब वृषकेतु जी किधर है, शिव जी किधर है, तुम अकेली क्यों विचरण कर रही हो। अकेली विचरण करना मतलब खतरा है, नारी कहीं भी अकेली विचरण करेगी तो उसके जीवन में खतरा है, भगवान शिक्षा भी दे रहे हैं। वेश्या स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, जो निरंकुश होती है वो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए भगवान ने वेश्या बोला। वेश्या विसर्मी होती है, कोई लज्जा नहीं। लेकिन याद रखिए, विद्वान ये कहते हैं यह जो जीवन है सबके ऊपर एक शासक होना चाहिए, भय रहना चाहिए। अगर भय नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। याद रखिए इस बात को, आपका लड़का है, लड़के के ऊपर अंकुश रखिए, डांट डपट जरूरी है। मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, ब्रह्मचारी गण है, गृहस्थ लोग कुछ भी हैं, अंकुश होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप हम बैठे रहें, डर होना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ देंगे तो कुछ भी करने लगेंगे, अधिकारी का भय होना चाहिए। भगवान वेश्या इसलिए बोले कि वेश्या स्वतंत्र होती है, उसके हजारों पति होते हैं, और जो स्वतंत्र हो जाता है वो कुछ भी कर सकता है। भाई स्वतंत्र विग्रह सब नारी, जो नारी स्वतंत्र हो जाती है उसके हजारों पति हो जाते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि नारी को बाल्यावस्था में पिता के अधीन रहना चाहिए, युवावस्था में पति के, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। भगवान ने स्वयं शिक्षा दिया है। आप देखिए, नारी ऐसी जाति होती है जिसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। भगवान का रथ निकलता है, जब बलराम जी आगे रहते हैं, पीछे जगन्नाथ जी रहते हैं, बीच में सुभद्रा जी रहती हैं, कितनी सुंदर व्यवस्था है। राम लक्ष्मण का वनगमन हुआ, राम जी आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे, बीच में सीता जी हैं। जब राम जी भी हट गए, सीता जी भी हट गए, सीता जी लक्ष्मण जी हट गए, सीता जी अकेली बच गई, तब रावण सीता जी को किडनैप करके ले गया। अकेले में कहीं भी खतरा है, इसलिए नारी को कहीं जाना भी चाहिए तो साथ में जाना चाहिए, कोई अपनी सहेली को ले लो चाहे किसी को साथ में ले लो, नहीं तो रावण के अनुचर भ्रमण करते रहते हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं। स्वतंत्रता में खतरा है, कहने का मतलब है। बार बार हम लोग बताते हैं, भोजन बना करके खुले मैदान में छोड़ दीजिए, पात्र में भोजन भरा हुआ है, ढक्कन नहीं है, तो उस पर किसका अधिकार होगा, कुत्ते बिल्ली का अधिकार होगा। ढक्कन रहेगा तो कुछ नहीं, सुरक्षा रहेगी तो सब डर जाएंगे। राम लक्ष्मण रहते तो सीता का हरण नहीं होता, याद रखिए। माने सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, नारी का जीवन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के पति के अधीन होना चाहिए, उसके ऊपर भी अंकुश लगनी चाहिए। तो यहां भी भगवान करें कि मैं वेश्या हूं, वेश्या स्वरूप का मतलब है मैं स्वतंत्र हूं, जिसे वेश्या स्वतंत्र होती है, वास्तव में भगवान स्वतंत्र है। हे असुरों, जिस प्रकार बंदर, सियार, कुत्ते इनके संबंध अस्थिर होते हैं और नित्य नए नए साथी चाहते हैं, उसी प्रकार से जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं वो नई नई पति को ढूंढती रहती है, नए नए मित्र को ढूंढती रहती है, उसको पुंसल स्त्री कहते हैं। लेकिन जो सदाचारिणी होती है, जैसे अनुसुईया महारानी है, सीता देवी है, राधा रानी है, जो सदाचारिणी स्त्रियां हैं, जिसमें दमयंती की कथा आती है और बहुत सी महाभारत में ऐसी कथाएं आती हैं, ये सब सदाचारिणी हैं। ऐसी स्त्रियां जहां भी रहती हैं समाज में शांति बनी रहती है। साधारण स्त्रियां अपने पति को छोड़कर के भाग जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं, लेकिन जो सदाचारिणी स्त्रियां हैं वो मर्यादा में रहती हैं, तो वैसी स्त्री की समाज में प्रशंसा की जाती है। तो स्वच्छंदता की यहां मतलब स्वच्छंद स्त्री की सभी निंदा करते हैं, तो ऐसी स्त्री की जो मित्रता जो होती है कभी अस्थायी नहीं होती है, विद्वानों का अभिमत है, रूपा जी से व्याख्या करते हैं। तो ऐसा कहकर मोहिनी मूर्ति की परिहास पूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यंत अस्वस्थ हो गए और गंभीर रूप से हंस पड़े और उन्होंने अमृत का घट अपने आप मोहिनी को दे दिए। तब मोहिनी ने जो काम करना था कर दिया, झगड़ा को निपटा दिया, एक तरफ से तो असुरों की झगड़ा निपटा दिया, लेकिन अमृत पिलाने के बाद पुनः झगड़ा हुआ क्योंकि असुर लोग पुनः देवताओं के ऊपर आक्रमण किए। तो मोहिनी प्रस्तुत श्लोक में यही दिखाया गया है कि अमृत कलश को लेकर के, अमृत का जो कलश है मोहिनी ने अपने आप छीन लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम हमारे हाथ से छीन लिए, मैं जगत का ईश्वर हूं तो हम भी तुम्हारे हाथ से छीन लिए और अपने आप को दे दिए और देवताओं को अमृत पिला दें, असुरों को नहीं पिलाई और अपना काम करके मोहिनी चली गई। तो किसी को ठगना हो तो इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि नारी जैसे किसी को ठग सकती है वैसा पुरुष नहीं ठग सकते। नारी में आकर्षण है, चुंबकत्व है, उसके रूप को देखकर कोई भी पागल हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, जैसे असुर लोग भूल गए। और असुरों की जो झगड़ा थी आपस झगड़ा, उसको तो उन्होंने निपटारा करा दिया, अपने आप चुप हो गए। तो इस प्रकार से जैसे देवता लोग भगवान के शरण में गए, भगवान ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया, तो उसी प्रकार से हम लोग को भी, भक्त को कोई भी मनोकामना हो तो सीधे भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान के शरण में जाने से भगवान अपने भक्त की वांछा को पूर्ण कर देते हैं। और स्त्री स्वरूप से भगवान ने सबको सावधान कराया कि ऐसी जो पुंसल स्त्रियों से सबको सावधान रहना चाहिए। ये बैरागी के लिए नहीं है, गृहस्थ की बात अलग है। तो भगवान का जो स्वरूप है बहुत सुंदर स्वरूप है, आकर्षक स्वरूप है और इस जगत की सबसे बड़ी मदिरा स्त्री है, याद रखिएगा। उसको देखते ही व्यक्ति को नशा आ जाती है, इसे शिक्षा मिलती है। भगवान अगर सुंदर बन जाए तो कौन नहीं आकर्षित हो जाएगा। तो इस संसार की जो सुंदरता है स्त्रियों की, वो भगवान की मोहिनी स्वरूप है। और भक्त लोग होते हैं स्त्री को मातृत्व की दृष्टि से देखते हैं, जननी समझा नहीं प्रणारी, यही वैष्णव की मर्यादा है। किसी भी स्त्री की मोहिनी स्वरूप दिखलाई दे समझे कि भगवान की मोहिनी स्वरूप है, ऐसा समझ करके प्रणाम कर लीजिए। सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोरी जो पानी। मर्यादा में रहने से गरिमा बनी रहती है, तो हम सभी को मर्यादा में रहनी चाहिए। और भगवान की माया बहुत प्रबल है, वो किसी को भी आकर्षित कर सकती है, स्त्री किसी को भी ठग सकती है, इसलिए वैष्णवों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। यदि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है आप गुरुजनों के संरक्षण में जाकर के उनसे परमिशन लेकर के आप मर्यादा में रहिए और अपने गृहस्थ लाइफ में प्रवेश करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो कुत्ते बिल्ली जैसी पत्नी मिलेगी, जैसे है ना कुत्ते बिल्ली कुत्ते कुतिया का क्या होता है, थोड़ा संबंध होता है, बंदर बंदर जैसी मिलेगी, फिर छोड़ेगी, फिर भाग जाएगी, फिर आप रोते रह जाइएगा। सदाचारिणी स्त्री खोजे, कुलवती स्त्री खोजे, तब आपका जीवन सही ढंग से बीतेगा। कुत्ते बिल्ली और सियार बोल रहे ना, तुलना दिया गया है, वैसे पत्नी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। बंदर सियार कुत्ते अस्थिर संबंध वालों से मतलब जीवन साथी कभी नहीं बनाने का। इसलिए गृहस्थ लाइफ में भी यदि जाना है तो विवेक से आप उसमें प्रवेश करें, नहीं अगर ये लालसा आप लखे हो अरे चलो भाग भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन मिला है भगवान से प्रेम करने के लिए। मानव जीवन की जो सार्थकता है वो भगवत प्रेम से है, हम सब आत्मा हैं, और अमृत भी पीना है तो तुक्ष अमृत का पान न करें। हम लोग सुनते हैं ना सारे वैष्णव से, तब यहाँ वैष्णव लोग बैठे हुए हैं बताते हैं ना कि हार्ट टेस्ट का जब आपको अनुभूति होगी तो लो टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। तो हार्ट टेस्ट भगवान की भक्ति है और लो टेस्ट विषय रस है। थूक लार को जो चाटते हैं इसको लोअर लोअर लो टेस्ट बोला गया है। इस अमृत को धिकारा गया है। कथामृत का पान करें और तब हम लोग का जीवन अमृत होगा और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा करके पार्षद बन करके हम भगवत धाम चले जाएंगे, वहां जाकर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। यही आज के प्रसंग का वर्णन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है?
कृष्ण
हाँ बोलियो।
ये मंथन लीला क्या बोलते हैं, समुद्र मंथन में जितने भगवान अवतार लिए थे इन लोगों का भी अलग अलग लोग होंगे?
चार अवतार लिए थे भगवान। अजित के रूप में भगवान बने और कच्छप अवतार हुआ, कच्छप का धारण करके भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया और मोहिनी अवतार धारण किया, स्त्री बने और धन्वंतरी अमृत को लेकर प्रकट हुए। भगवान का चार अवतार हुआ है इसमें।
लोग हाँ। भी अलग अलग होंगे ना लोग?
हाँ लोग तो अलग अलग हैं।
मोहिनी का लोग भी अलग होंगे, नंदवरी?
मोहिनी तो एकदम क्षीर समुद्र के तट पर स्वर्ग में, वो तो वहीं पर प्रकट हुई ना।
जैसे नरसिंह देव भगवान का एक लोक अलग है वैकुंठ में।
हाँ वो तो आप सभी वर्षों का वर्णन है भागवत में, वो किस वर्ष में किस खंड में किस भूभाग में भगवान रहते हैं उनके वर्षों का वर्णन भागवत में है। किम पुरुष है, हरिवर्ष है, समझ रहे? ऐसा ऐसा वर्णन किया गया, आप भागवत में देख सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ हरे कृष्ण।
आपने कहा कि अमृत जो है,
हाँ जी,
विष को जो उसको भी अमृत कर देता है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में कूद गए,
हाँ,
वो विष से सांवले हो गए। वो मतलब जब जमुना जी में कूदे कालियानाग के विष से भगवान सांवले हो गए?
नहीं, भगवान तो सांवले है ही है। ये कौन बोला कि सांवले हो गए? भगवान को वो डसता था, जो डसेगा तो विष चढ़ेगा तब मर जाइएगा ना। तो वो तो बीच से जो जल खोल रहा था वो भी अमृत में बदल गया, सब पशु पक्षी पीने लगे। भगवान अमृत तुल्य हैं, उनके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अमृत तुल्य हैं भगवान, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो डसा तो काले हो गए, भगवान तो ऐसे ही काले हैं, श्याम स्वरूप के हैं, जगत को स्मरण दिलाने के लिए श्याम स्वरूप धारण किए हुए हैं। भगवान के ऊपर किसी विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। शिव जी ने उनका नाम लेकर के विष को पान कर लिया, कंठ में ही सुखवा दिया, अंदर नहीं जाने दिए। अंदर जाते तो इस शरीर के अंदर बहुत से जीव होते हैं, वो भी मर जाते हैं, कंठ में ही सुखवा लिए। इसके बहुत से भाव हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उनका नाम अमृत है, उनका स्वरूप अमृत है, इसलिए उसी अमृत का पान करते रहना चाहिए। देखते रहिए, नाम गाते रहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और हाँ बोलिए, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवचन के अंत में आपने बताया था गृहस्थ आश्रम के बारे में कि उसमें संयम से रहिए। प्रभु जी आपसे ये जिज्ञासा है कि गृहस्थ आश्रम का जो उद्देश्य है उसके बारे में अगर आप थोड़ा और बताएं।
आप प्रत्येक संडे को आइए, समझ रहे हैं ना, रविवार को। आप प्रतिदिन आते हैं कि कभी कभी आते हैं?
हम लोग प्रभु जी हम बाहर से आए हैं, कुवैत से आए हैं।
हाँ तो आप बाद में मिलिए।
हाँ जी,
अब ये तो समय फिक्स रहता है, भागवत में सब बताया गया है। आप वैष्णव के संग में रहिए। नारद जी ने राजा युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है, भागवत के सप्तम स्कंद में वर्णन है, आप पढ़ करके जान सकते हैं। और वैष्णव का आप संग करिए, यहाँ बहुत से वैष्णव बैठे हुए हैं, और कोई भी वैष्णव से आप संग करिएगा तो वैष्णव के संग से आपका संशय दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है संयम से रहने का मतलब आप अपनी मर्यादा में रहिए। मर्यादा का मतलब होता है धर्म, धर्म की दायरे में हम सबको रहनी चाहिए। आप गृहस्थ हैं तो अपनी पत्नी के ही दायरे में रहिए, अन्य जो स्त्रियां हैं उनको माता के समान जानिए, जननी समझाने प्रणाली, उनको माता की सदृश जानेंगे तो आपकी भावना में कभी दुर्भावना नहीं आएगी, आपकी भावना सही बनी रहेगी। और आप पत्नी के साथ रहकर भगवान की भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पति और पत्नी दोनों को किसी से गलत संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पहले शिक्षा दिया है, सारी दुनिया में इस्कॉन का यही मुख्य उद्देश्य पहले सिखाया जाता है। पहला है नो मेडिटेटिंग, दूसरा है परिस्त्री गमन। आपको अपने जीवन को सीमित रखना है, इसलिए आपको पत्नी प्रदान की जाती है मित्र के रूप में, कि आपके अंदर कभी विषय का तूफान आएगा तो आपकी धर्म पत्नी आपकी रक्षा कर सकती है, आपको बचा सकती है और बचाती भी। तो पत्नी आपकी एक मर्यादा है, उसके अंदर आप रही है तो आपको कोई निंदा नहीं करेगा। स्वयं के बहुत से उपाय हैं, पत्नी को केवल भोग का साधन नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर की ओर से आपसे आपको गिफ्ट के रूप में मिली हुई है, दोनों जनों को मिलकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से युक्त जीवन होना चाहिए। भक्तों से संपर्क करें, आप पढ़ें भागवतम, आपको जानकारी हो जाएगी। हरे कृष्ण। और कुछ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।